संवाद 2455 आशावाद एकम रविवार तारीख 26/10/1970 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु श्री समयसार शास्त्र में निद्राधिकारी गाथा 204 અને શ્લોક 141 તથા 142 ઉપર સુવર્ણ પરિમા પ્રવચન સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 16મી વખતના સંત પ્રવચન નંબર 294
નમો નોય સૌ હરિયંતાણમ નમો નોય સૌ સિદ્ધાણમ નમો નોય સૌ આયરિયાન નમો નોય સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો નોય સૌ ત્રિકાળવર્તિ શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ શ્રી ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમૂર્તિ મંગળમ કુંકુંદારી ઉજેન્દ્ર મંગળમ નમઃ સ્વાનુભૂત્યાચાસ્તે સ્વાય ભવાય સર્વા
સમય સાર નિર્દરાધિકાર ચલતે હૈ 204 ગાથા निर्जरा नाम धर्म की वृद्धि शुद्धि के किसको होती है? धर्म उत्पन्न तो हुआ है संवर में, समझ में आया? राग से भिन्न करके अपना आत्मा शुद्ध चैतन उसमें एकता से संवर की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति हुई है। वह उसकी शुद्धि की वृद्धि कैसे हो? वो निर्जरा अशुद्धता का नाश और कर्म का गलना हो तो अशुद्ध व्यवहार नहीं है, कर्म का गलना। अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध का नाश, पर शुद्ध की वृद्धि हो खरे खर धर्म कहने में आता, उसको निर्जरा कहते हैं। तो अपवाद वर्ष कितना अपवाद करने से निद्रा होती है? कहते हैं कि नहीं, अपवाद करे तो निद्रा होती, तब शास्त्र निद्रा नहीं आते, शास्त्र में आते हैं तब शास्त्र निद्रा, पंडित जी तब शास्त्र निद्राते हैं। ये प्रश्न हो गया था पहले एक बार, वो स्पेशल आई थी ना, स्पेशल आई थी वो तुलाराम जी, तुलाराम ना वत्सा गया, तो उसमें एक जुआ ने प्रश्न किया था, सेठ प्रश्न करो महाराज ने कि तब शास्त्र निद्रा, पंडित जी वो आते हैं ना सत्ता सूत्र में, तब साथ निद्रा प्रश्न करो के नव निशानी बात है भाई, वो तो निमित्त का कथन है, तपसा का अर्थ कहीं अनुसरण इंद्रिया जी है कभी खरेखर तपसा नहीं। तपसा तो आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप उसका अवलंबन लेकर उसमें उग्र पुरुषार्थ से स्थिर हो, उसका नाम प्रतिसंपन्न ही तप हो। ये आत्मा की उग्र पर्याय प्रकट हो उसका नाम तप है, समझ में आया? जब सुवर्ण को गेरू 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 होता ना है, गेरू गेरू से गेरू कहते हैं, और सोना को गेरू थोपड़ते हैं ना तो सोना का ऊप आते हैं, ऐसे ये बात है। ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप पुण्य पाप का विकल्प से भान तो हुआ, समझ में आया, भेद ज्ञान हुआ है, अरे उसमें उग्र पुरुषार्थ से एकाग्र होना वो प्रतपन्ते त्या आत्मा की शोभा बढ़ती है, समझ में आया? वो कहते हैं देखो अनुप फिर, इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं त्या से, इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए ऐसे आत्मा स्वभावत, देखो आत्मा उसका स्वभावत, आत्मा उसका स्वभावत एक ज्ञान, क्या कहते हैं, आत्मा उसका स्वभावत ज्ञान टिकाली, आत्मा उसका स्वभावत ज्ञान, एक ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए। आत्मा उसका स्वभाव ज्ञान, आत्मा स्वभाववान तो स्वभावभूत ज्ञान उसका अवलंबन लेना चाहिए, समझ में आया? जो आ महा सिद्धांत आत्म स्वभाव भूत ज्ञान, आत्म पदार्थ उसका स्वभाव भूत भाव ज्ञान, उसका ही आलमन लेना चाहिए। निमित्त का अवलंबन नहीं, विकल्प का अवलंबन नहीं, एक समय की पर्याय का भी अवलंबन नहीं। विशा अब घिणी बात छा, बाद में बात थी कहीं पते हुए क्या? समझ में आया? भगवान आत्मा, आत्मा उसका स्वभाव भूत इसे टिकाव कायम से ऐसा जो ज्ञान, एक ज्ञान है वस्तु एक है ना, तो उसका स्वभावभूत ज्ञान एक, देखो आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही आलम्बन करना चाहिए। समझ में आया? निमित्त का अवलंबन नहीं, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प का अवलंबन नहीं, और एक समय का औस पर्याय है व्यवहार आत्मा, उसका भी अवलंबन नहीं। समझ में आया? इस टिकाली आत्मा उसका स्वभाव, वो स्वभाववान है तो उसका स्वभाव भूत कायमी एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान उसका अवलंबन लेना। वो अवलंबन करना चाहिए एक ज्ञान का ही, अत एकांत के दिया उसका भी अवलंबन लो, राग का भी अवलंबन लो, निमित्त का भी अवलंबन लो, ऐसा अनेकांत नहीं किया है, ऐसा है नहीं। अनेकांत उसका अर्थ है नहीं, एक आत्म स्वभाव ज्ञान, एक आत्म स्वभाव ज्ञान, एक ज्ञान का ही अवलंबन लेना चाहिए। समझ में आया? उसके अवलंबन से ही बदलना ही है। भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञान एक ज्ञान, एक रूप है ना वस्तु, एक ज्ञान पद एक रूप है, लागे आए पद एक है, आत्मा एक है तो ज्ञान पद भी एक है, तो ऐसा आत्म स्वभाव एक ज्ञान का ही अंतर अवलंबन लेने से ही निज पद की प्राप्ति होती है। पर्याय मां उद्रेव आत्मा और स्वभाव ज्ञान उसका आलंबन लिया तो पर्याय हुई, पर्याय हुई ना, आलंबन तो पर्याय लिया ना, आना आलंबन लिया पर लिया पर्याय आलंबन। समझ में आया? तो वो पर्याय आलंबन लेने से ही निज पद की प्राप्ति होती है, कि आत्मा आनंद है शुद्ध है, ऐसी प्राप्ति पर्याय में अवलंब त्रिकाली स्वभाव ज्ञान एक का अवलंबन लेने से ही पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होती है, कि आत्म निज पद उसको कहने में आता है। समझ में आया? राग आदि व्यवहार आदि पर पद है, अपद है। भगवान आत्मा निज पद जो ज्ञान एक रूप है, देखो उसका अवलंबन से ही, तो अवलंबन तो पर्याय हुई, तो ये पर्याय जो अवलंबन उसको लिया उसमें पर्याय में शुद्ध की प्राप्ति हुई। न्याय शुद्ध जो शक्ति रूप द्रव्य रूप है, ज्ञान भी जो शक्ति रूप था, वो एकाग्र होने से पर्याय में शुद्धता, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक शांति की, आनंद की वगैरह शुद्ध की प्राप्ति, ये निज पद की प्राप्ति कहने में आता है। समझ में आया? उसके अवलंबन से ही पद की प्राप्ति होती, पर खुला तो करना पड़ा निज, मूल तो पद की, पद पद और निज, जैसे द्रव्य गुण स्वभाववान स्वभाव है, ऐसा जो अवलंबन लिया तो पर्याय में शुद्धता की जो शक्ति द्रव्य ने गुण मा शुद्ध पवित्र गुण अनंत था, उसकी पर्याय में प्राप्ति हुई। समझ में आया? अरे शू करूं आके मान के मेरे हाँ करना हाँ ऐसा करने से धर्म होता है बुधवाई क्यों द्रव्य आयु गुण आयु पर्याय आई समझ में आया? भगवान आत्मा अपना निज द्रव का ज्ञान स्वभाव भूत ज्ञान ज्ञान प्रधान से कथा नहीं आने ज्ञान में सब आनंद आदि आ गए अंदर ऐसा पद उसका अवलंबन लेने से ही आश्रय करने से ही शुद्धि शुद्ध जैसा भाव है ऐसी पर्याय में शुद्धता का अंश सब प्रकट होता है ये निज पद की प्राप्ति कहने में आता है। समझ में आया? उसका नाम संवरण है निद्रा रूपी निज पद है निजाधिकार है ना तो संवर पूर्वक संवर संवर तो अग्रसर हुआ है संवर पूर्वक अग्रसर हुआ निद्रा होती है वो पहला आ गए हैं कोष में संवर अपनी धुरा अपना कार्य करते हैं राग का अभाव रूप स्वभाव का भान संवर किया अपनी धुरा कार्य का संभव करते हैं अरे निद्रा फैली समझ में आया? तो कैसे निद्रा फैली विस्तारता विस्तार हुआ शक्ति का व्यक्त का शक्ति की व्यक्तता का जो शक्ति थी वस्तु में पूरा उसका भेद ज्ञान हुआ भान तो हुआ तो अंशे शुद्धि तो प्रकट हुई है सम्यक दर्शन ज्ञान अंशे तो सब गुण प्रकट हो गया है क्योंकि द्रव्य में एक गुण है ऐसा अनंत गुण है तो ये ज्ञान का अवलंबन लिया तो सब अनंत गुण रूप आत्मा का अवलंबन लिया अनंत अनंत गुण का पिंड का अवलंबन से अनंत जो गुण है सबकी पर्याय की निर्मलता की पर्याय में प्राप्ति हुई ये निज पद की प्राप्ति है प्राप्त की प्राप्ति हुई है उसकी मिला मिला है राजा जी उसमें है नहीं समझ में आया सुन रही अरे ना तुम मारक भाई आओ निज पद की प्राप्ति होती है एक बात ये 80 से पहले लिया चलो 80 से लिया भ्रांति का नाश होता है ये 80 से लिया पहले 80 सिद्ध करके समय भेद है नहीं ये तो समय एक ही है समझ में आया नहीं तर तो निजरा बताना है भाई सत्ता शुरुआत से 5 दिन लिया किसे नहीं तो संवर पूर्वक निजरा तो आई तो पहले पाचक पहले से लिया है निज संबर बड़ी संबर से शुरू किया है क्या भ्रांति का नाश कैसे हुआ ने? नहीं तो संबर पहले तो क्या किया था कलश में पहला कहा था संबर अपना कार्य संभावते हैं अबे निद्रा अग्नि फैलती है कर्म जलाने को तो फिर पाचे बात एवं सहेली होती है कि फिर पहले से लिया है पाचे वस्तु का स्वभाव ज्ञान आनंद शांति शांति अधिकारिता वितरागता कि सब गुण का पिंड प्रभु तो ये गुण का अवलंबन कहा एक पद का तो उसका अर्थ ही द्रव्य का अवलंबन हुआ समझ में आया उसका अवलंबन से ही पर्याय में शक्ति रूप जो द्रव्य गुण था वो प्रगट रूप पर्याय में निज पद की प्राप्ति हुई जो पद था अंदर में शांति वितरागता आनंद आदि पर्याय में प्राप्त हुआ समझ में आया तो भ्रांति का नाश हुआ समय भेद है नहीं ये तो कथन में भेद करके बताना है कथन एक साथ ही कैसे हो कैसे कह सकते हैं कहते हैं कि भ्रांति का नाश होता है दूसरी कहो तो शुद्ध पद की पर्याय की उत्पाद भ्रांति का व्यय ध्रुव का अवलंबन समझ में आया ध्रुव का अवलंबन तो शुद्धता का उत्पाद भ्रांति व्यय का भ्रांति का व्यय ઉત્પાદ ભાઈ તૃપ્તિ નો આગે સમજ માં આયા? और भ्रांति का नाश होता है तो आत्मा का लाभ होता है। देखो समझ में आया, आत्मा का लाभ होता है। इसलिए आत्मा ना जितना गुण है सबकी पर्याय में प्राप्ति होती है, ये आत्मा का लाभ हुआ। समझ में आया? जितना आत्मा में शुद्ध भाव है संख्या ही, ये सबका पर्याय में प्राप्ति होती, सारा आत्मा का लाभ हुआ। नीत पद में तो ज्ञान कहा ना, ज्ञान कहा था ना भाई, ज्ञान पद कहा था ना, ज्ञान तो ज्ञान पद की प्राप्ति हुई ऐसे पहले लिया, आत्मा आत्मा लिया कि ऐसी शैली उपाड़ी है ना कि आत्मा एक है तो पद ज्ञान पद एक है, आत्मा पद एक है ज्ञान पद एक है, तो ज्ञान पद एक है ऐसा स्वभाव भूत एक ज्ञान का अवलंबन लेने से ही निज पद की प्राप्ति होती है। तो निज पद नाम ज्ञान है उसको पद गण करके निज पद की प्राप्ति कहा। अरे भ्रांति ना शुद्ध सारा आत्मा का लाभ हुआ अभी से। आज आत्मा धर्म है वितराग का, हो सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसी आत्मख्याति है ना, प्रसिद्धि क्या है आत्मा की प्रसिद्धि आ रीति करी है, टीका का नाम आत्मख्याति है। तो आगमन से ही तो उसमें ऐसा दिया था ना, आत्म स्वभाव ये ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए, उसके आगमन से निज पद की ज्ञान पद की प्राप्ति हुई, वो भ्रांति का नाश होता है तो सारा आत्मा का लाभ हुआ। सारा आत्मा में जितना गुण है सब पर्याय में प्राप्त हुआ। समझ में आया? और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है, जो सिद्धत्म अनात्म परिहार हो, संस्कृत में सिद्धत्व अनात्म परिहार हो, तो अनात्मा का तो अभाव हो गया, आत्मा का लाभ हुआ तो अनात्मा का अभाव हो गया। अरे समझ में आया? और जब क्या लोग तो आया था अपने है? ज्ञान तो आया था पुरुष अनात्मा का परिहार होता है, और परंतु मिथ्या पण नाशी हो, आ तो बदा हवे बदा बदा भाव से एनो अभाव थी गयो, विकारा जी बदा अनात्म भाव उसका परिहार हो आगे बचो से ने भ्रांति में तो एकला मिथ्यात का नाश हुआ, तो हवे तो अनात्मा का सब राजा जी सबका परिहार हो गया। आया पहले तो दो ही प्रश्न होते हैं, पहले मैं निज पद की प्राप्ति किया पची क्या का आत्मलाभ, तो निज पद में आत्मलाभ में क्या फेर है? उसमें भी प्रश्न होता है कि उसमें वो ज्ञान पद को एक गण करके ज्ञान पद निज पद की प्राप्ति हुई ऐसा दिया, पीछे भ्रांति का नाश हुआ, पीछे आत्मलाभ हुआ, सारा आत्मा की परिहार सब परिहार में प्राप्त हुआ, अनात्मा का परिहार हुआ, राजा जी जो अनात्मा है अभाव हो गया। समझ में आया? और कर्म न मूर्छति, अब इन्हें ही शब्द पर आए लो, न कर्म मूर्छति है कर्ता कर्म, कर्म ऊपर लक्ष्य है ना, कर्ता कर्म है तो कर्म निमित्त परिणाम नहीं होता। ठीक है, निमित्त जो होता था कर्म, वो कर्म निमित्त पणे नहीं होता है, अरे निकल गया। समझ में आया? कर्ता शब्द भाई कर्म पर कर्ता समझ लो, आत्मा यानी अधीन न होता है ये शब्द कर्ता आई तो शब्द ऐसा नहीं है, तो न कर्म मूर्छति, कर्म न मूर्छति एम के कर्म न मूर्छति, कर्म मूर्छा पाम तो नहीं एम तो ना पड़े भाई हमारे पंडित जी, मैं कीधु आम कर ना के मूर्छति नो अर्थ कर्म कर्मपणु पामता नहीं, एटले निमित्तपणु पामता नहीं, कर्म नो तो निमित्तपणु था ने तो निमित्तपणु पामता नहीं, न कर्म मूर्छति निमित्तपणु कर्म में था वो पामते नहीं है, खलास हो गया। समझ में आया? न कर्म उठती है न शब्द कोश में ऐसा निकल सिंह भाई के तू बलवान नहीं होता है। शब्द ऐसा होता तो और शब्द हम नहीं होते। निमितपणा का बल था, लक्ष्य करते थे नैमितिक, नैमितिक लक्ष्य करते थे तो उसका निमित का बल है सकने में आता था। निमित नैमितिक का नाश हुआ तो निमित का बल रहा नहीं, निमितपणा होने की शक्ति उसमें रही नहीं। क्यों ये टीका करी हो नाम क्रमबद्ध समझ में आया? इतना प्रश्न छब्बीस मा की बात कर्म उत्पन्न बात है। आत्मा एना अधीन थाय शब्द करता एम न कर्म उत्पत्ति कर्म नहीं आम करतु एना पर जोर दे। इतने पहला प्रश्न एम आयो था काले कि कर्म फावतु नहीं हवे एम आयो तो एनो अर्थ ही थियो ने कि कर्म मां निमित्तपण हतुं ए निमित्तपण हवे रह्युं, कर्म मां निमित्तपण रह्युं नथी आवे न कर्म उत्पत्ति। समझ में आया? जो आ धर्म नी निद्रा का क्रम और जब कर्म का निमित्तपणा रहा नहीं तो राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होता। राग द्वेष मोह जो नैमित्तिकपणे उत्पन्न था, नैमित्तिकपणे उत्पन्न था उसमें निमित्तपणा रहा नहीं, नैमित्तपणे उत्पन्न होता था न रहा, राग द्वेष मोह ही रहा नहीं। राग द्वेष में उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह के बिना पुनः कर्माश्रम नहीं होता, ये तो बराबर है। राग द्वेष मोह नहीं तो फिर कर्म तो निमित्त हो तो आश्रम उसके कारण से आता है, आता यहां नहीं था कर्म आता नहीं। समझ में आया? इतना तो पराधीन हुआ कि नहीं कर्म को, राग द्वेष मोह न किया तो कर्म न आया। जो राग द्वेष करते कर्म आते हैं, इतनी तो आधीन हुआ ने जड़ को आधीन होना पड़ेगा नहीं ऐसे नहीं। यहां तो पहले जो राग द्वेष मोह था तो परमाणु में कर्म आने की शक्ति रूप पर्याय क्षति थी, क्यों परमाणु में कर्म होने की शक्ति रूप परमाणु है ही नहीं, उसका नाम कर्म आश्रवता नहीं ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? अरे राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते और राग द्वेष मोह नहीं पुनः कर्माश्रम नहीं होता, एम के राग द्वेष नहीं है ना तो कर्माश्रम नहीं हुआ ने, ये प्रश्न हुआ था छठी काल भाई नहीं क्या रात को, जो राग द्वेष है तो कर्म आता है, राग द्वेष न हो तो कर्म ना आवे, तो इतना तो अधीन है कि नहीं जड़ को, इतना अधीन होना पड़े कि नहीं ऐसा है नहीं। यहां तो ऐसे कहते हैं कि जब राग द्वेष मोह था तो परमाणुओं में कर्म आने की शक्ति की योग्यता उस समय जी परमाणु में थी वो आता था। समझ में आया? अरे कर्म राग द्वेष मोह नहीं है तो कर्म परमाणु में कर्म होने की शक्ति नहीं तो कर्म आश्रम होता नहीं, एम कहते हैं। अरे समझ में आया? मानस ने ज्यां त्यां कोई पण परद्रव्य को निमित्त आधीन करना है, अब पराधीन तो ऐसा है
नहीं,
पराधीन कोई पर्याय कोई कभी है नहीं कहीं, तो आई तो वो राग द्वेष में उत्पन्न हुआ नहीं तो परमाणुओं में भी उसको ये जीव पुरता, ये जीव को वो कर्म होने की पर्याय वाला परमाणु है नहीं, है? वो बात है। समझ में आया? उसको यहां ऐसा कहा कर्म आश्रम नहीं होता। समझ में आया? और आश्रव के बिना पुन कर्म बंध नहीं होता, आश्रव नहीं है तो बंद रुकना है ऐसा कहां से हो, परमाणु जहां आते नहीं तो यहां रुकना है ऐसा तो होता नहीं, बंद नहीं होता बस त्याहू थी तो नया की बात किया। अरे पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है, पूर्वबद्ध जो पड़ा है परमाणु वो ये कर्म मुक्त होकर कर्म छूट होकर मुक्त का कर्म अकर्म रूप पर्याय होकर निद्रा को प्राप्त होता आ जाता है। समझ में आया? कर्म मुक्त होकर, देखो ना कर्म छूट गया, तो कर्म छूट गया का अर्थ कर्म की पर्याय रूप जो कर्म थी ये अकर्म पर्याय हो गई, कर्म मुक्त हुआ। मुक्त हुआ दूसरा क्या, कर्म की पर्याय थी, कर्म की पर्याय से छूटकर अकर्म पर्याय हुई, कर्म से कर्म मुक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है। जो बोलिए मैं ली, देखो यहाँ जा रहे कर्म बंद नहीं हुआ तो पिछली पूर्व का कर्म निद्रा है, इन निद्रा को प्राप्त होता है, इतना तो आत्मा का शुद्ध का लाभ हुआ, तो कर्म को निद्रना पड़ा, निद्रना पड़ा, आत्मा को शुद्ध का लाभ हुआ तो कर्म को निद्रना पड़ा, इतना तो कर्म की निद्रा को पराधीन है कि नहीं? नहीं, ये कर्म ही ऐसा था, पूर्वत कर्म जो है मुक्त होकर उसकी युक्ता ऐसी थी, छूट होकर उसकी निद्रा हो जाती, मुक्त छूट जाती, मुक्त आमा कैम लेकिन ठीक आमा मुक्त है, भूल है तो मुक्त है, बराबर है, न कर्म प्रागवत कर्म उपभोक्तम छे, लो संस्कृत उपभोक्त छे, बराबर छे, आमा आमा मुक्त है, हिंदी में मुक्त है, भूल है, बड़ी भूल लो अपने गुजराती में, बराबर, कारण पूर्व भोगवानो अर्थ वो अर्थ की उसमें वो लो तो ये भुक्त का अर्थ क्या, कर्म की पर्याय अकर्म रूप रहा हो गया, वो भुक्त हो गया, भुक्त का ही कर्म की पर्याय भुक्ते था आत्मा, भुक्ते तो राग का भाव, राग का भाव भुक्ता का चले गया तो कर्म की पर्याय का भुक्त पड़ा रहा नहीं, तो आकांक्षा नहीं कि कर्म की पर्याय में ये भी युक्ता थी कि भुक्त पड़ा न रहा। सुधार दी जो आ मोटी भूल साहब हिंदी में से बीजे थे नवी हिंदी में सुधार क्या है, नवी हिंदी है बराबर है, चल पांच है ना, ए उपभुक्तम निर्जिति प्रागबद्धम कर्म उपभुक्तम निर्जिति, पूर्वे बंधायला कर्म भोक्ता हुआ फिर जाते हैं, किसको भोक्ता हुआ, आत्मा भोक्ते हैं कर्म के प्रिय को, उपभुक्त कहते हैं, लिखा है पर लिखा का अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है, वो कर्म की पर्याय में अनुभाग पर्याय थी वो नाश हो गई, उसका नाम भुक्त होकर निद्रा हो गई, समझ में आया, अच्छा बदल देते था हमारे पंडित जी रहा, पंडित जी कैसे कबूल करे ऐसा भाई, तो इसको कोई पक्षपात का नहीं है पंडित के, वस्तु ऐसी है, वो बोलने में जरूर की बात है बस, पर उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है समझना चाहिए, भाव समझा भी नहीं, एकला शब्दार्थ करे पर तात्पर्य क्या है उसका, परमार्थ है, समझ में आया, हाँ हाँ दोनों गुजरती हिंदी से दोनों, पहली आउट से दूसरा पास है, पहली से कोई पास क्या है लिखा है, हाँ पहली है मुक्त है पहली में, ये भूल हो गई, आई मुकी गए मुकाई गए वो भुक्त थी यार मुकाई गए, ये तो कर्म की पर्याय में इस प्रकार की छूटने की योग्यता थी अपने से, तो उपभोग हुआ कर छूटा ऐसा कहने में आता है, क्या कर्म की पर्यात्मा भुक्त है, जड़ की पर्यात्मा भुक्त है, कभी दो बीच में तो चंद भाव है, समझ में आया, पर कथन की पद्धति क्या करना, तो कहते
अपने
भुगता है ज्ञान में क्या पर को भुगता है आत्मा कर्म के उदय को उदय की पर्याय तो जड़ है आत्मा की पर्याय में भोग ना हो तो विकारी अरूपी पर्याय है विकारी अरूपी पर्याय समझ में आया ये शैली ऐसी है सिद्धांत की तत्व की कथन शैली है उसके भाव क्या है वो समझना चाहिए समझ में आया आता है ना वो शब्दार्थ करना आयमार्थ करना और मतार्थ करना नयार्थ करना और तात्पार्थ करना एक श्लोक में से पांच पांच बोलकर में ऐसा पाठ है दृढ़ संग्रह में है जैसा आचार्य टीका में है परमात प्रकाश में है एक एक गाथा में पांच बोल शब्दार्थ आगमार्थ अनमतार्थ नयार्थ तात्पर्य समझ में आया शब्दार्थ तो शब्दार्थ हो ऐसा कहो पीछे प्रश्न नयार्थ कई नहीं का वाक्य यार व्यवहार नहीं का वाक्य है क्या निश्चय नहीं का है आज्ञम का पक्ष का है अनुमति का निषेध का है और उसका भावार्थ सार क्या है ऐसे समझ रहा क्या ऐसी कहीं समझ में आया हम आग्रह हो परमात्मा का पंथ या तो भाई तारा अंतर का मार्ग है नहीं होता पूर्वत कर्म भुक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है समस्त कर्मों का अभाव होने से है खलास हो गया साक्षात मोक्ष होता है वस्तु स्वरूप तो मोक्ष थी द्रव्य तो मोक्ष रूपी था पर्याय में मोक्ष हो गया साक्षात हम कहते हैं समझ में आया कर्म का अभाव से कहा हुआ कौन ही कहा वो तो कह रहे समय अभाव होने से ना इसको निमित्त का कथन हुआ कर्म की पर्याय अकर्म रूप हुई है वो तो उसके कारण से हुई है निमित्त पराना ऐसा हुआ उसके कारण से या अपने से मुक्ति हुई ऐसी बात है वहां कहीं फेरफार कहीं था वो नहीं थी वस्तु स्थिति तो ऐसी है समझ में आया तो कहते हैं ना तुम्हें केवल ज्ञानावरण का नाश होकर केवल ज्ञान हो ऐसा कहो और तुम तो कैसे हैं केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान का वर्ण का नाश होता है ऐसे लेते हो हम कहते हैं पंडित जी वो ऐसे कहते हैं ना वो रतनचंद जी तुम ऐसे कहते हो केवल ज्ञान हो तब केवल ज्ञान आवरण का नाश होता है एम एम तो नहीं कहते हैं पर एम कहो एम कहते हैं केवल ज्ञान आवरण का नाश हो तो केवल ज्ञान हो ऐसे कहो ऐसे भी नहीं ने केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो केवल ज्ञान का नाश हुआ ऐसे भी नहीं है केवल ज्ञान अपने से उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान की पर्याय उसके काम से अकर्म रूप हुई है ये काम समझ तो एक ही है ना उसमें बोले ऐसा केवल ज्ञान का नाश हो तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो ऐसे लो तुम्हें कहो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो केवल ज्ञान का नाश होता है पर हम ऐसा भी नहीं कहते सुन तो सही अरे भगवान भारे भगवान पण मारे भगवान थे ना पण ये थे वो है लिखा है ना खानिया चर्चा में खानिया चर्चा समझ में आया खानिया चर्चा में हमारे पंडित जी था ना हम एक जता नहीं उसमें लिखा है कि तुम ऐसे क्यों लेते हो वो तरफ से लेते हो शास्त्र में चला है मोक्ष आप पता सूत्र में आते हैं मोक्ष आप ऐसे लिया है तुम कहते हो क्योंकि आत्मा पुरुषार्थ करके स्वभाव प्रकट करो तो कर्म का नाश होता है ऐसा क्यों लेते हो अरे भगवान प्रभु ऐसा है नहीं भाई ये तो निमित्त से सही लिया है निमित्त से सही लिया है बाकी आत्मा जो समय में अपना पुरुषार्थ में केवल ज्ञान होता है अथवा अर्भितरता होता है वो समय मोह का क्षय कर्म का क्षय कर्म में होने की अपनी युग तक होता है या हुआ तो उसमें होना पड़े ऐसा नहीं वस्तु स्वतंत्र है कोई के अधीन है कोई द्रव्य ईश्वर है जड़ेश्वर पर जड़ेश्वर है ईश्वर है परमाणु जड़ेश्वर है अपना जड़ेश्वर की पर्याय कोई के ताबे से होती नहीं समझ में आया समस्त कर्मों का अभाव होने से लिखा है देखो शब्द शब्द बांधा उठावे व्यवहार वचन है वो तो कथन है निमित्त का कथन है कई नई का कथन है नई लगाना पड़ेगा कि नहीं साक्षात मोक्ष होता है लो ऐसे ज्ञान के आलमन का ऐसा माध्यम है लो सर्वावली है भावार्थ कर्म के क्षोभ श्रम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं जो वैसा ही जो देखो वो तो भेद पड़ते हैं अपनी पर्याय में अपने से कम निमित्त में भी ऐसा क्षोभ श्रम होता है। कर्म का क्षोभ श्रम होता है तो अपनी पर्याय में क्षोभ श्रम होता है ऐसा है नहीं, वो दूसरी चीज है दूसरी चीज है। पण आई तो टूकी भाषा में समाज समझाना है, लंबी लंबी क्या करे कि कर्म का क्षोभ्रम वक्त भी अपना पुरुषार्थ से क्षोभ्रम हो तब पर्याय होती है, नहीं लंबा लंबा क्या करे। तो टूकी भाषा से समझाते हैं कर्म के क्षोभ्रम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, जो भाषा ऐसी है वस्तु भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव को अवलंबन लेने से ज्ञान की पर्याय में शुद्धि की वृद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि तो वृद्धि कोई अभिनंदन नहीं कर देते सामान का, शुद्धि की वृद्धि तो शुद्ध का शुद्धों को अभिनंदन करते हैं। समझ में आया, वस्तु भगवान आत्मा उसका ज्ञान पद नीच पतिका उसका अवलंबन से शुद्धि की वृद्धि तो होती है कि नहीं, एक रूप शुद्धि नहीं तो एक रूप शुद्धि नहीं तो मति सूत अवधि ऐसा पर्याय प्रकट होता है, तो वो पर्याय होता है कहीं सामान्य ज्ञान को अज्ञान नहीं करते हैं, पर सामान्य ज्ञान में अभेद रूप पर्याय होती है तो टेको आते हैं अभेद को तो ठीक है सारा समर्थन करते हैं, अभेद को समर्थन करते हैं। ये भाषा हिंदी में थोड़ी थोड़ी आवड़े ना अपने, समझ में आया कहीं ज्ञान सामान्य को ज्ञान नहीं करते प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। देखो ज्ञान की शुद्धि बढ़ती है इसलिए भेदों को गौण करके पर्याय में जो भेद ऊपर लक्ष्य छोड़ करके एक ज्ञान सामान का आलमन लेकर देखो एक ज्ञान असाधारण ज्ञान स्वरूप दिखा आत्मा को ध्यावना लिख एक ज्ञान सामान का आलमन लेकर प्रवर्तन सार महर्षि भाई ने एक असाधारण ज्ञान को कारण बनाकर कार्य उत्पन्न होता है ग्रहण करी ने वाता है प्रवर्तन सार में एक असाधारण ज्ञान का कारण बनाकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है पर्याय में। समझ में आया, हरे विषय अध्यात्म यो जीवन सत्य वस्तु पण परिचय ने लोगों ने बाहर ना एटलो बधो परिचय वधी गयो कि सच आता है एम से तो अरे आता तो विकांत ऐसे लगते हैं ऐसे नहीं भगवान तो तेरी चीज की चीज ही ऐसी है। समझ में आया, हाँ हाँ वस्तु कहते हैं कि ज्ञान पद का अवलंबन लेने से ज्ञान सामान का अवलंबन लेकर आत्मा को जागना है इसी से सर्व सिद्धि होती। लो वो सब खुला सके थे तो उसका टूका मन ले लिया टूका मन उसे सर्व सिद्धि होती है लोक में। अरे श्लोक 141 अच्छा अच्छा स्वयं चलंती यदि मा संवेन व्यक्त हो निष्पीत अखिल भाव मंडल रस प्राग भाव मत्तायु अक्षय भिन्न रस सयेश भगवान ये कूपी अनेकी भवन वलगत उत्कलित अभी अद्भुत निधि चैतन रत्ना करो। दरियानी उपमा थी लो समुद्र की उपमा भगवान को चैतन रत्ना कर समुद्र में जब रत्न पड़ा है भगवान आत्मा में अनंत शांति आदि का अनंत रत्न घूम पड़ा है। समुद्र जैसे उछलते हैं ऐसे भगवान पर अपनी एकाग्रता से पर्याय में उछलते हैं। समुद्र में तरंग पर उठते हैं आई भी पर्याय के तरंग उठते हैं। समझ में आया, भगवान चैतना रत्नाकर को सागर की उपमा दिया, सागर वाला चले गए आदा आप पंडित जी रिया मुख्य है ना तो पंडित जी के सागर तो बोला सेठ ऊपर लग गया ना। समझ में आया, समस्त पदार्थों के समूह की रस को पी लेने की अतिशयता से मानो हो गई हो मत हो गई हो, ऐसी निर्मल से निर्मल संबंध व्यक्ति हो, निर्मल 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 पर्याय स्वभाव का आश्रय से प्रकट हो जाती है। भगवान आत्मा अपना पूर्ण निधान निधि उसके ऊपर एकाग्र होने से निर्मल पर्याय मत हो गई है। मत नाम एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक शुद्धि होती है। समझ में आया? समस्त पदार्थ समुद्री रस को पी लेने की अतिशय विशेष बात है। मानो मत हो गई है, ऐसे ही निर्मल से भी निर्मल संवेदन शक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती है। दरिया भी समुद्र तो अपने आप तरंग उछलते हैं, भर्ती आती है तो अपने आप से आता है, कोई ऊपर से नदी आती है 25 इंच और नदियां पड़ती हैं 25 इंच बरसात की तो भर्ती आती है, ऐसा है नहीं, भर्ती तो अंदर में से आती है उछलती फराक में। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा मध्य बिंदु में, जैसे वो मध्य बिंदु से उछलती है, मध्य बिंदु में अनंत ज्ञान आनंद पड़ा है, उसके एकाग्रता से पर्याय में बढ़ती आती है, बाढ़ कहते हैं बाढ़ उछलती है, फुहारा नीचे दाबते हैं ना, फुहारा ने निकलते ना पानी, शुद्ध स्वभाव दर्प है, एकाग्रता का जन दबान हुआ शक्ति की शक्ति फाटती है। समझ में आया? हाँ, भगवान बद्धा पास बिराजते हैं ऐसा। समझ में आया? सारा फुवारा केवल ज्ञान फाटे ऐसा फुवारा है आप। देखो, समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता है। ज्ञान की पर्याय तो सबको जाने, सद्रव को जाने, एक समय की पर्याय सद्रव को जाने, शुद्ध ज्ञान की एक समय की पर्याय भी सद्रव को जाने, पर प्रत्यक्ष में परोक्ष जितना भेद है, बाकी फेर है नहीं। तो कहते हैं समूह, समस्त पदार्थ का समूह, जो साधक की बात है, निद्रा की बात है, साधक की बात है, उसकी ज्ञान की भी पर्याय सद्रव को एक समय में जानते थी मत वाली हो गई है। समझ में आया? अपना द्रव्य का भी ज्ञान और सद्रव का ज्ञान, स्वपर प्रकाशक एक समय उछलती है पर्याय। समझ में आया? समस्त पदार्थ के समूह रूपी अब निद्रा का अधिकार केवड़ी की बात नहीं आए भाई, समस्त पदार्थ के समूह रस पी गया तो केवड़ी ज्ञान में क्या? ना ना, केवड़ ज्ञान की बात नहीं, आई तो अपनी पर्याय की निर्मल साधक भाव की बात है। समझ में आया? साधक मट्टी में के सूत आदि अवधि मन उठाता है, वो पर्याय की बात यहाँ है। समझ में आया? वस्तु वो तो महान ज्ञान शक्ति भी जो टिकाव है वो भी स्वपर प्रकाश शक्ति रखते हैं, स्वपर प्रकाश शक्ति, पर जो पर्याय हुई वो भी स्वपर प्रकाश शक्ति रखती है, स्वकामी ज्ञान और सद्रव का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की एक पर्याय में। समझ में आया? जिसने एक पर्याय इतनी न मानी एने सद्रव न माना, और सद्रव जिसने न माना उसने एक समय की पर्याय अपने सामर्थ्य वाली पर्याय को न माना, द्रव्य को तो एक बाजू रहो। समझ में आया? एक स्वद्रव नहीं है मानने वाला, गुण ज्ञान की एक समय की पर्याय को नहीं मानते। समझ में आया? एक समय की पर्याय में स्वद्रव पी जाता है, ऐसी ताकत है, मत वाले हो गए क्या? कोई तो गिनती नहीं, इतनी में सामर्थ्य वाले हूं। पर्याय ओ पर्याय पी लेने की विशेषता से, अतिशय विशेषता से मानो मत हो गई हो, ऐसी निर्मल से भी निर्मल संवेदन प्रकटता, अनुभव की दिशा की प्रकटता अपने आप उछलती। देखो, अपने आप उछलती का अर्थ व्यवहार रत्न का विकल्प का सहारा है तो उछलती है कि संगठन मजबूत है न मनुष्य है तो उछलती है, ऐसा नहीं। समझ में आया है ना? पाठ अच्छा था स्वयं उछलती, अच्छा था स्वयं उछलती, स्वयं प्रकट होती है। ओहो स्वयं अर्थ करे थे ना कोई पंडित जी, स्वयं का अर्थ कहीं करते, स्वयं एटले पोते होता है, स्वयं एटले अपने से होता है, अपने रूप से किया है, उसमें किया है वो हणिया में लिया है। तो पंडित जी की नहीं ऐसा नहीं है, तो बात ऐसा है स्वयं अपने से, अपने से उछलती है। देखो स्वयं शब्द पड़ा है कहानियां चर्चा में, वो चर्चा बहुत होगी स्वयं शब्द में से। अरे भगवान आज भी आज का विषय है, वस्तु की स्थिति ऐसी है भाई, भगवान आत्मा स्वयं पर्याय संवेदन निर्मल शक्ति व्यक्त हो रूपे उछलती है। यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर लो, ऐसा यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर लो, ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका अर्थ अभिन्न है। क्या कहते हैं कि निर्मल की निर्मल पर्याय उत्पन्न हो छता अभिन्न है, निर्मल की निर्मल पर्याय हो तो छता अभिन्न है, ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है। समझ में आया? सूक्ष्म तो है भाई, गुजरात दिखा रहे ने, धर्मना यौवन काल की बात है यार। धर्म की जुआनी डॉक्टर केवल बचा रद्द हो गया अपन, आ तो साधक जुआनी है धर्म की। क्या कहते जो फाटी ये प्याला क्या फाट उठके, कोई को गणती नहीं, कर्म को गणती नहीं, राग को गणती नहीं है, अपना भगवान को गणती है। एक पर ये भगवान सामने मीट मांडी है, दूर मांझा है क्या या नहीं, उससे अपने आप आनंद की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, संकीत की पर्याय, शांति ये वितरागता की पर्याय अपने आप उछलती है। कोई निमित्त है न विकल्प था न व्यवहार हुआ न उछलती है, ऐसा है नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा निधि उसकी संभाव जहां किया वो पर्याय में इतनी साकार प्रकट हुई कि एक एक पीछे एक इसमें जितना गुण है सब पर्याय उछलती है, समय समय में दूसरे समय दूसरी तीसरे दूसरी, तो वृद्धि को ही पाप प्राप्त होती है। जब दरिया में लोड आता है ना, लोड लोड क्या कहते हैं पानी का प्रति एक पीछे एक बाढ़ धक्का लगते पानी का, वो एक पानी धक्का लगता है पचल लाऊंगी तो आई हो गया पचल, ऐसे आत्मा में से द्रव का अवलंबन लिया है तो निर्मल पर एक पीछे एक लोड बढ़ती आती है अंदर में से फाट फाट प्यार। हाँ उसका नाम निद्रा कहते हैं, उसमें ऐसे कारण से अशुद्धता चलती है, कर्म डूब जाता है हम कहते हैं। समझ में आया? ओहो वो यो भगवान अद्भुत निधि वाला, ओहो हो आचार भगवान अद्भुत निधि वाला ऐसा कहा? देखो अद्भुतम निधि चैतन्य रत्नाकर अमरचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं भगवान आत्मा, यानी भगवान आत्मा कहते बे नहीं, अरे हमें पामर से, अरे पामर नहीं सांबर प्रभु, भगवान आत्मा चैतन अद्भुत निधि वाला, अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर संयमन रमुद्र में रतन पड़ा है, संयम संयम रमन समुद्र में वेणु रतन है, वेणु वेणु समझते हैं उसके वालू, इस संयम में वालू रतन की वालू है, क्या कामनी આય હોય તો ક્યાં કામ નહી. આ તો ચૈતન રત્નાકર વેલું પડી અંદર ને કે છે સમજ મે આયા. ભગવાન આત્મા દરિયો સમુદ્ર અદભુત નિધિ અનંત જ્ઞાન અનંત અનંત આનંદ અનંત સ્વચ્છતા પ્રભુતા કરતા કર્મ શક્તિઓ આદિ અનંત 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 સ્વભાવ પડા હે એ અદભુત ભગવાન આત્મા નિધિ ચૈતન્ય રત્નાકર હે. રત્ન જો ત્રણ રત્ન કહેતા હે ને વો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કો રત્ન કહેતા હે કે નહીં. શ્રી રત્ન કહેતા હે કે નહીં. તો વો તો અધૂરી પર્યાય કો રત્ન કહા. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર મોક્ષ કા માર્ગ ઉસકો રતન કહા. તો ઉસકા પૂર્ણ પર્યાય તો મહારતન. આ ઉસકી એસી પર્યાય જો ભળીએ આ જ્ઞાન મેં તો મહારત્ના રતન કરે. રતન કા મહા સમજ મેં આયા. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ને રતન કહા કે નહીં. તો રતન તો હજી અધૂરી પર્યાય નિર્મળ તો ભી રતન કહા. તો ઉસકી પૂરી પર્યાય કેવળ જ્ઞાન થોડ તો મહારતન હૈ. અને એસી એસી અનંતિ કેવળ જ્ઞાન કે પર્યાતી જ્ઞાન ગુણ મેં પડી તો ચૈતન મહારત્નાકર હે. એસા અનંતા ગુણ મેં અનંતિ શક્તિ પડી હૈ. જ્ઞાન પર્યાય રૂપી તરંગો કે સાથ તો જ્ઞાન થી વાત લીયા છે ને. પણ જ્ઞાન ની દર્શન શાંતિ વિતરાગ આનંદ વગેરે જ્ઞાન પર્યાય રૂપી તરંગો ઉછળતે સાથ જિસકા અર્થ અભિન્ન હૈ. ભલે ઉછળે પણ પર્યાય તો અભિન્ન હોતી હૈ. ખંડ ખંડ હોતી નહીં. એસા એક હોને પર ભી અનેક હોતા હુઆ. વસ્તુ તરીકે ગુણ તરીકે એક હોને પર ભી પર્યાય મેં અનેક હોતા હુઆ. પર્યાય મેં અનેકપણા રૂપે પરિણમન કરતા હુઆ. હા હા જ્ઞાન પર્યાય રૂપી તરંગો કે દ્વારા દોલાયમાન હોતા હૈ. દરિયો ડોલે છે ને જયારે ઉછળે ઉછળે. હા હા જુઓ મોટા ડુંગર જેટલા ઉછળે. બીચ મેં ઉછળતે ને દરિયા બીચ મેં પર્વત જૈસા ઉછળે. આગબોટ બાગોટ હોય તો એસે ઉછળી હોળી એસે એસે ઉછળે એસે. એસે ભગવાન આત્મા મેં એટલા તરંગ ઉછળતે હૈ કે દોલાયમાન હોતા હૈ. પ્રણમન 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 જ્ઞાન કા આનંદ કા શાંતિ કા વિત આદિ દોલાયમાન પ્રણમન હૈ. સમય મેં આયા. ઉછળતા હૈ એસી અમતી શક્તિ મેં સે પર્યાયો સ્વભાવ કા અવલંબન સે પર્યાયો ઉછળતી હૈ. બસ ઉસકા નામ ધર્મ અને ઓ સ્થાન મેં નિદ્રા ઉઠી. સમજ મેં આયા. આટલા અપવા કર્યા માટે ના મુનુદ્રી કયા માટી કર્યા નિદ્રા ઉઠી એ અહીં ના પાડતા એ નિદ્રા કા કારણ નહીં. હા 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 સમજ મેં આયા. સબ સાથ નિદ્રા ભાઈ તો વ્યવહાર કા કથન હૈ ભાઈ. નિશ્ચય જો એસા ભાવ હો તો વો વ્યવહાર કો તપસ્યા કા નિમિત્ત હો લેને મેં આતા હૈ વ્યવહાર સે. વસ્તુ સ્થિતિ તો એસી હૈ. વકીલ સમજ મેં આતા હૈ. હા 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 વ્યવહાર જૈસે અનેક રત્નો વાળા સમુદ્ર એક જળ સે ભરા હુઆ હૈ. જળ એક હૈ કે બે ઓર ઉસમે છોટી બડી અનેક તરંગે ઉઠતી રહેતી હૈ. જો કે એક જળરૂપી હૈ સબ જળરૂપી હૈ. ઇસી પ્રકાર અનેક ગુણો કા ભંડાર અનેક ગુણો કા ભંડાર યહ જ્ઞાન સમુદ્ર ભગવાન આત્મા એ જ્ઞાન જળ સે ભરા હુઆ હૈ. જૈસે દરિયા મેં જળ સે ભરા જ્ઞાન જળ સે ભરા હુઆ હૈ. ઓર કર્મો કે નિમિત્ત સે જ્ઞાન કે અનેક ભેદ અપને આપ પ્રગટ હોતે હૈ. નિમિત્ત કા અર્થ ઉસકા ઉસકા જીતના અભાવ હોતા હૈ. અના પુરુષાર્થ જીતના હોતા હૈ ઉસકા ઉસકા ઉતના અભાવ હોતા હૈ. જ્યાં જીતના પુરુષાર્થ કી પર્યાય ઉગ્ર હુઈ ઇતના ઇતના કર્મ મેં અભાવ હોતા હૈ. કર્મ કે કારણ સે તો ઉસમે ભેદ દિખતે થે વો ભેદ છૂટ જાતે એમ કહેતે. અનેક ભેદ અપને આપ પ્રગટ હોતે હૈ ઉને એ જ્ઞાન રૂપી જાણના. એમ ભલે ભેદ ઉત્પન્ન હો જેમ જળની અનેક તરંગો હો તો પણ જળ રૂપી હૈ. બરાબર भगवान आत्मा में आनंद ज्ञान शांति स्वच्छता प्रभुता पर्याय में अनेक प्रकार की व्यक्तता उत्सवति हो, सब आत्मा रूप अथवा ज्ञान रूपी जानना राग रूप ने व्यवहार रूपी तरंग उछलते है नहीं। अरे वाह भाई, अपने आप प्रकट होने एक ज्ञान है जानना, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना, क्या पर्याय उपलक्ष नहीं करना, दृष्टि को द्रव्य ऊपर रखना और अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती है तो अभेद हो जाती है, पर्याय उपलक्ष गौण कर देना। समझ में आया? पर्याय को खंड खंड नहीं अनुभवना, भिन्न भिन्न पर्याय उत्पन्न हो ऊपर लक्ष्य नहीं करना, एम कहते हैं मुंह तो एम है। वस्तु स्वरूप ध्रुव अभेद ऊपर से दृष्टि हटाना नहीं, जहां तेरा दृष्टि का दूर त्या थंभ देना ध्रुव में, ओ तरंग उछले पर्याय हो पर्याय बुद्धि नहीं करना। मैं आया हो 141 हुआ एक सौ पैतालीस क्लिष्टं स्वयमे दुष्कर्य तरे मोक्षोन्मुखे परमगि क्लिष्टं च परे महावृत्तपोभारेण भग्नाचिरं साक्षात् मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ति नहि। कहते हैं कि कोई भी दुष्कर तक मोक्ष से परामुख कर्मों के द्वारा स्वयं विधिना गिना के बिना क्लेश पाते हैं तो पाओ। मिथ्या दृष्टि भगवान की आज्ञा बाहर अनेक प्रकार का सब साज्ञानी करते हैं। समझे आया? धोनी तो अपने करते हैं ना, वो खिला में रहते हैं, खिला लोहा का खिला के शिला उसमें सो रहते हैं, अग्नि जलाते हैं 108 अग्नि पांच पांच खाना, एक बार कष्ट करो तो करो, उसमें कुछ धन है
नहीं।
क्लेश पाते हैं तो पाओ, एक बात दुष्कर तर मोक्ष परांगमुख कर्म से, अने कोई भी मोक्ष उन्मुख अथवा जिनाग्ना में कहेला व्यवहार जिनाग्ना में कहेला व्यवहार महाव्रत ने तब के भाग से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करो, धर्म नहीं उससे। महाव्रत और सबके भार से देख भाषा कितना दिया है, सहजानंद का भान नहीं तो व्रत का बोझा है, भार भार निर्वाह करना नुखाना पड़ने, लोग की लाज नड़े, अंदर में सहन शक्ति इतनी है नहीं, पराणी जोर से इतना पालन करना पड़े, बोझा हुआ करते। ज्ञाता दृष्ट आनंद स्वरूप सहजानंद भगवान को पत्ता लगा नहीं, समझ में आया? ओ विना एकला महाव्रत अने समिति जो इन्हें चलना बराबर विगेर विगेरे तब के पास है ने महाव्रतम तपो तपो में बुध आयु विनय करो विकल्प से भगवान आदि का करो भार है, तप है ना, बार प्रकार का तप में नहीं पर कहा है विकल्प वस्तु का तो भान नहीं, बोझा हुआ कैसे? आया तो हो प्राप्त करो तो करो, पर साक्षात मोक्ष स्वरूप निरामय पद है तो संवेदमान है, ये तो ज्ञान के ज्ञान गुण बिना किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता, उसका विशेष खुलासा।
आया।